Hare Krishna, Srimad Bhagavad Gita, Chapter 7, Verse Number 20. इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जना शलाखया, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साकृजातं सहगणरघुनाथन् पीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति, गोपेश गोपिका कांता, श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनं गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानु सुते देवी, प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैतं गदाधारं श्रीवासदी गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता मात की जय हो। सातवां अध्याय जिसका शीर्षक है भगवत विज्ञान, भगवत ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण श्लोक नंबर 20 में अत्यंत ही मुख्य बात बता रहे हैं। कृपया मेरे साथ साथ श्लोक उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं, काम स्तर हृत ज्ञान प्रपद्यन्ति अन्य देवता, तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। कामस्तैस्तै हृतज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया कामस्तैस्तैहितज्ञान प्रपद्यन्ति अन्यदेवताः तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया कामस्तैस्तैहितज्ञान प्रपद्यन्तीन्यदेवताः तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया कामस्तैस्तैहितज्ञान प्रपद्यन्तीन्यदेवताः तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया शब्दात् कामस्तैस्तैहितज्ञान काम कहते हैं इच्छाओं को, जो हमारी भौतिक इच्छाएं होती हैं उनको काम कहा जाता है और उसके काम है तय तय मतलब उन हृत ज्ञान हृत मतलब किडनैप कर देना ज्ञान को हरण कर देना जिनकी बुद्धि या जिनका ज्ञान काम इच्छाओं द्वारा हर लिया जाता है प्रपद्यन्ते यानी शरण लेते हैं अन्य देवता अन्य मतलब दूसरे देवताओं की शरण लेते हैं और फिर क्या करते हैं तम नियममास्ताय तम मना उस नियम मतलब विधान। अब देखो हर एक देवता का कोई ना कोई विधान होता है, किसी को मंडे के दिन पूजा करना होता है, किसी को ट्यूसडे के दिन, किसी को फ्राइडे के दिन, और उस दिन के अंदर भी उनकी पूजा के अलग अलग विधान होते हैं, उनको नियम कहते हैं। आस्था मतलब वो पालन करते हुए प्रकृत्या यानी स्वभाव से नियता मतलब वश में हुए स्वया अपने आप वो स्वयं से इनके नियमों के द्वारा अपने आप को वश में कर देता है, क्योंकि उसकी बुद्धि जो है वो काम इच्छा द्वारा इच्छाओं के द्वारा मारी जाती है, तो वो इनके नियमों के अनुसार उनकी पूजा करती है करता है। कौन? जिनकी बुद्धि भौतिक अनुवाद देखिए जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। जैसे जैसा उनका स्वभाव होता है उसी के अनुसार वो किसी देवता को चॉइस करते हैं और फिर उसके पास जाते हैं और उनके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनको फॉलो करते हैं। कौन व्यक्ति? कामस्तैस्तैहितज्ञान जिनकी बुद्धि काम इच्छाओं द्वारा मारी जाती है केवल वही जाते हैं देवताओं के पास। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जो समस्त भौतिक कर्म से मुक्त हो चुके हैं वे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और उनकी भक्ति में तत्पर रहते हैं। अब भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए भौतिक कल्मश यानी हृदय की अशुद्धता को पवित्र होना होगा और अब जब तक पवित्र नहीं है इच्छाएं हैं काम के द्वारा भौतिक इच्छाओं के द्वारा हम इतनी ज्यादा हमारी बुद्धि मलिन होती है तो फिर वो भगवान की ओर जाता नहीं है, जा नहीं सकता नहीं जाता नहीं। जैसे भगवान ने बताया था ना श्लोक नंबर 15 में नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहृत ज्ञान आसुरं भावमाय। वो माया के द्वारा उसका ज्ञान जो है वो हर लिया जाता है। आज क्या है बुद्धि हरी हुई है किसके द्वारा? इच्छाओं के द्वारा। और पहले ही वो भगवान के पास नहीं जाता है क्योंकि वो दुष्ट है और नराधम है, माया के द्वारा उसका ज्ञान हर दिया गया। ज्ञान क्या है कि मैं भगवान का अंश हूँ और मेरा कर्तव्य है कृष्ण की सेवा करना। वो ज्ञान उसका हर लेती है माया और वो सोचता है कि मुझे प्रभुत्व जताना है, भौतिक जितनी भी भगवान की ये सृष्टि है उसको उसके ऊपर मुझे प्रभुत्व जताना है। तो वो क्या करता है, भगवान की शरण में नहीं जाता। और फिर आज भगवान बताते हैं कि उनकी बुद्धि इच्छाओं द्वारा मारी गई है। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि ये भौतिक कल्मश है। वास्तव में सबसे बड़ी अपवित्रता ये है कि जीव जो है वो भगवान से स्वतंत्र होकर आनंद लेना चाहता है। ऐसा हो भी नहीं सकता, लेकिन क्योंकि इच्छाओं के द्वारा उसकी बुद्धि हर ली गई है, इसलिए वो सोचता है कि भगवान की शरण ना जाकर मैं इंस्टेंट आनंद प्राप्त करूंगा। और कहा जाता है प्रपद्यन्ते अन्य देवता। लेकिन यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं जो समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो चुके हैं वे तो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और उनकी भक्ति करते हैं। जब तक भौतिक कलमश धूल नहीं जाता तब तक वे स्वभावतः अभक्त रहते हैं, किंतु जो भौतिक इच्छाओं के होते हुए भी भगवान की ओर उन्मुख होते हैं वे बहिरंगा प्रकृति द्वारा आकृष्ट नहीं होते। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही मुख्य बात बताते हैं कि जब तक उनके भौतिक कलमश साफ नहीं होते हैं तब तक क्या होते हैं, वो अभक्त रहते हैं, भगवान के पास नहीं जाते हैं। इच्छाएं होना बुरा नहीं है, हृदय के अंदर यदि कोई भौतिक इच्छा है तो वो बुरा नहीं। हम भौतिक संसार में रहते हैं तो यदि कोई इच्छा आ गई है मन में तो वो कोई गलत बात नहीं है, अगर उस इच्छा का सही तरह से उपयोग किया जाए। अगर इच्छा को लेकर हम अपने पिता के पास जाते हैं या माता के पास जाते हैं तो गलत नहीं है, क्योंकि हमें किसी चीज की वस्तु की आवश्यकता होगी तो माता पिता से मांगना तो बुरा नहीं है ना। उसी तरह से यदि जीव के हृदय में कोई इच्छा आती है तो भगवान के पास यदि जाता है तो बुरा नहीं है, क्योंकि भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान हमारे पिता हैं और हमारे सुहृद हैं, तो हम भगवान से अपनी इच्छा को शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं किंतु जो भौतिक इच्छाओं के होते हुए भगवान की ओर उन्मुख होता है वो बहिरंगा प्रकृति द्वारा आकृष्ट नहीं होता, उसको फिर माया नहीं कुछ भी करती, क्योंकि भगवान की शरण में गया है तो भगवान कहते हैं सुकृति है और ऐसे भगवान की शरण में आएगा फिर भगवान उसकी इच्छा को पूरा करेंगे, धीरे 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 प्रेम उत्पन्न होगा, फिर वो इच्छाएं छोड़ देगा और भगवान के पास भगवान की भक्ति इच्छा रहित होकर करेगा। आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं चूंकि वे सही उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं अतः वे शीघ्र ही सारे भौतिक काम इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, वो शुद्ध हो जाते हैं। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम के अत्यंत ही सुंदर श्लोक के विषय में कहेंगे। अभी श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि स्वयं को वसुदेव के प्रति समर्पित करे और उनकी पूजा करे। यहाँ पर भगवान श्रीमद् भागवतम में भगवान को समर्पित करना है मनुष्य को, चाहे वो किसी भी स्टेज पर है। उसका काम क्या है, अपने आप को भगवान वसुदेव के प्रति समर्पित करना और उनकी पूजा करना, चाहे वह भौतिक इच्छाओं से रहित हो या भौतिक इच्छाओं से पूरित हो या भौतिक कलमश से मुक्ति चाहता हो। देखो तीन प्रकार के लोग यहाँ पर बताए गए हैं। एक तो भौतिक इच्छा जिसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, एकदम अकाम है, कोई काम इच्छा नहीं। और दूसरा भौतिक इच्छाओं से पूरित यानी भरपूर इच्छाएं हैं, संसार में आ गया है लेकिन इतनी इच्छाएं कि बस सर्व काम हो, ये भी चाहिए वो भी चाहिए वो भी चाहिए वो भी चाहिए, हर चीज उसको चाहिए, इच्छाओं से पूरित हो, या फिर भौतिक कलमशों से मुक्ति चाहता है, मोक्ष काम, बस चाहता है कि भौतिक जो कलमश है दुख है इससे मैं मुक्ति चाहता हूँ, मुझे कोई भौतिक इच्छाएं नहीं है लेकिन मोक्ष की इच्छा है। तो उसको क्या करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, जैसा कि भागवतम में 2.3.10 में कहा गया है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। अकाम यानी जिसके अंदर कोई कामना नहीं है, सर्व कामो वा यानी जिसके अंदर बहुत सारी कामनाएं हैं या फिर मोक्ष कामा, या फिर जिसके अंदर केवल मोक्ष की कामना है, भौतिक कोई कामना नहीं है, वे सारे व्यक्ति क्या करें, तीव्रेण भक्ति योगेन, बहुत ही सुनिश्चित तरीके से भगवान की भक्ति करें। यजेत पुरुषम परम, परम पुरुष भगवान की भक्ति करें और किसी की और याचना लेकर जाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान की भक्ति करेंगे तो अगर हम निष्काम होंगे तो भगवान की कृपा प्राप्त होगी, अगर कामना वाले होंगे तो भी भगवान की कृपा प्राप्त होगी, अगर मोक्ष प्राप्त करना चाहेंगे तो भी भगवान की कृपा प्राप्त होगी। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, जो अल्पज्ञ हैं तथा जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है, वे भौतिक इच्छाओं की अविलंब पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। अब शास्त्र क्या कहता है, अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदार भी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। चाहे तुम कुछ कैसे भी हो, कामनाएं हैं नहीं है, मोक्ष की इच्छा है, जो भी है, तुम्हें कहाँ जाना चाहिए, भगवान के पास जाना चाहिए। लेकिन जो अल्पज्ञ होते हैं, बेवकूफ होते हैं, जिनकी बुद्धि कामनाओं द्वारा हर ली जाती है, वे क्या करते हैं, वो सोचते हैं भगवान के पास जाएंगे, भगवान के पास जान उनको भगवान के अंदर श्रद्धा नहीं होती है, वो सोचते हैं कि अगर देवताओं के पास जाएंगे ना तो हमें जल्दी प्राप्ति होगी। वो फिर अपनी, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छी बात लिखी है, भौतिक इच्छाओं की अविलंब पूर्ति, वो सोचते हैं इंस्टेंट मुझे ये प्राप्त हो जाएगा, इसलिए क्या करूं, देवताओं के पास जाऊं। आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि सामान्यतः ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते, क्योंकि वे निम्नतर गुणों वाले यानी रजो या तमो गुण वाले होते हैं। यानी कि यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि यदि आप इच्छाओं के साथ भी भगवान के पास जाना चाहते हो तो आपको सतोगुणी होना चाहिए, एटलीस्ट रजो और तमोगुणी व्यक्ति जो है वो भगवान की शरण में नहीं जा सकते। जैसे भगवान की जो शुद्ध भक्ति है वो तो शुद्ध सात्विक गुण में होगी, लेकिन रजो और तमोगुण में रहकर हम भगवान की मिश्रित भक्ति भी नहीं कर सकते। अतः वे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं, वे पूजा के विधि विधानों का पालन करने में ही प्रसन्न रहते हैं, इतना अच्छा लगता है उनको और इतनी श्रद्धा के साथ देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि उनकी इच्छाएं होती है ना, और वो समझते हैं कि बस ये देवता ही ऐसा है जो मेरी इस इच्छा को पूरा करता है, तो बहुत ही श्रद्धा के साथ, पूरे यकीन के साथ, भरोसे के साथ उस देवता की पूजा करते हैं और इसमें बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। देवताओं के पूजक छोटी छोटी इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होते रहते हैं और ये नहीं जानते कि परम लक्ष्य तक किस प्रकार पहुंचा जाए। उनके पास इतनी अक्कल नहीं होती है कि वो ये सोच सकें कि यदि मुझे देवता अगर कोई पुत्र देता है तो वो पुत्र मेरे लिए हानिकारक भी हो सकता है, यदि मुझे कोई भौतिक सुविधा देता है तो जरूरी थोड़ी है उस सुविधा को भोगने के लिए मैं भी जिंदा रहूं, है ना। कोई भी और भी कोई वस्तु यदि देवताओं के द्वारा हमें प्राप्त होती है तो क्योंकि वो भौतिक है, अब देवता भी भौतिक है, देवता कोई आध्यात्मिक जगत के प्राणी नहीं है, देवता भौतिक ब्रह्मांड में है। भौतिक ब्रह्मांड में मैंने आपको बताया था ना 14 लोक हैं, उसमें जो स्वर्ग लोक है वहां पर देवता रहते हैं, तो ये भौतिक ब्रह्मांड के हुए ना, तो क्योंकि वो स्वयं भौतिक हैं तो जो भौतिक जो वस्तु भी देंगे वो भी भौतिक होगी। अब हम क्योंकि चिन्मय भगवान के अंश हैं तो भौतिक वस्तुओं के द्वारा हमें आनंद प्राप्त होने वाला नहीं है, लेकिन क्योंकि इच्छाओं के द्वारा उनकी बुद्धि हर ली गई है तो वो इतना प्रेरित होते हैं, वो जानते ही नहीं है कि वास्तविक आध्यात्मिकता क्या है, आत्मा का लक्ष्य क्या है और उस तक किस तरह से परम लक्ष्य तक पहुंचा जाए। किंतु भगवत भक्त कभी भी पथ भ्रष्ट नहीं होता, चूंकि वैदिक साहित्य में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा का विधान है। अब यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वेदों में भी अलग अलग देवताओं की पूजा बताई गई है कि किस तरह से, अगर आपको धन चाहिए तो लक्ष्मी के पास जाना है, अगर आपको सुंदरता चाहिए तो सूर्य देव के पास जाना, अगर आपको अच्छा पति चाहिए तो शिव जी के पास जाना है, अगर ज्ञान चाहिए तो सरस्वती माता के पास जाना है, तो ये वेदों में बताया गया है। वो क्यों बताया गया वेदों में वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले हम तात्पर्य को पढ़ लेंगे। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वैदिक साहित्य में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा का विधान है, अतः जो भगवत भक्त नहीं है वे सोचते हैं कि देवता कुछ कार्यों के लिए भगवान से श्रेष्ठ हैं। अब वो समझते हैं कि क्योंकि देवता, ये देवता ना अच्छा पुत्र दे सकता है, तो फिर देवता भगवान से श्रेष्ठ है। ये सुंदरता दे सकता है, भगवान शायद नहीं दे सकता है, तो ये श्रेष्ठ है। ये जो लक्ष्मी है वो धन दे सकती है, अब शायद भगवान से श्रेष्ठ है, तो उसके पास जाते हैं। ज्ञान, वास्तव में ये सारे ऐश्वर्य भगवान के हैं। अब भगवान ने ये अपने समझो एक तरह से नुमाइंदे रखे हैं, रिप्रेजेंट तो भगवान को ही कर रहे हैं वो, और भगवान की ही दी हुई वस्तुओं को देते हैं। लेकिन व्यक्ति इतना बेवकूफ होता है, वो समझता है कि ये देवता शायद ज्यादा श्रेष्ठ है तो इनसे ही मांगो, भगवान के साथ उनका अप्रोच नहीं होता है, तो नीचे से ही अपना काम चलाना चाहते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं किंतु शुद्ध भक्त जानता है कि भगवान कृष्ण ही सबके स्वामी है। चैतन्य चरितामृत में आदि लीला 5.142 में कहा गया है, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। वास्तव में एक अकेला कृष्ण ही ईश्वर है और बाकी सब हैं वो उनके भृत्य हैं, उनके सेवक हैं। चाहे वो देवता ही क्यों न हो, वो सब भगवान के सेवक हैं। केवल भगवान श्री कृष्ण ही स्वामी हैं और सब अन्य उनके दास हैं। फलतः शुद्ध भक्त कभी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं के निकट नहीं जाता। वो भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ता है, उसको अपने और भगवान के दरमियान किसी देवता को रखने की आवश्यकता नहीं है। वो अपनी इच्छाओं को भी लेकर, यदि उसके हृदय में कोई इच्छा भी है, तो भी वो भगवान के पास जाता है और भगवान अवश्य उसकी इच्छा को पूरा करते हैं और धीरे 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 उसकी इच्छाओं को समाप्त करके शुद्ध प्रेम प्रदान करते हैं। इसलिए जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान के पास जाते हैं, देवताओं के पास नहीं जाते। वह तो परमेश्वर, और आगे श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, वह तो परमेश्वर पर निर्भर रहता है और वो जो कुछ देते हैं उसी से संतुष्ट रहता है। फिर वो भगवान के पास जाते भी हैं यदि कोई इच्छा लेकर, लेकिन यदि उसकी इच्छा पूरी नहीं भी होती है तो भी वो संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान जो चाहते हैं, भगवान की जो प्लानिंग होती है वो मेरी प्लानिंग से अत्यधिक श्रेष्ठ है। मुझे भूत भविष्य वर्तमान के विषय में नहीं पता, लेकिन भगवान को सब कुछ पता है। हो सकता है जो चीज मैं इच्छा कर रहा हूँ वो मेरे लिए हानिकारक होगी, इसलिए भगवान जो है वो मुझे नहीं दे रहे हैं। तो भक्त जो होते हैं वो हृदय से संतुष्ट होते हैं, और उनको सबसे बड़ी बात श्रद्धा होती है भगवान के पास। अब देवताओं के भक्त जो होते हैं ना, वो किसी भी तरह से मरा के वो देवताओं को मजबूर करके भी वो वस्तु लेना चाहते हैं, बस कुछ भी हो जाए मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। लेकिन भगवान के भक्त जो होते हैं वो भले इच्छा लेकर भी भगवान के पास जाते हैं, तो वो इसे बोलते हैं, कृष्ण मेरी ये इच्छा है, मैं ऐसा चाहता हूँ, लेकिन फिर भी जैसी तुम्हारी इच्छा, जो तुम्हें अच्छा लगे वैसा करना, जो मैं कह रहा हूँ वो तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपके आदेश के अनुसार, आपको जैसा अच्छा लगे मैं आपके आदेशों अनुसार संतुष्ट रहूंगा। फिर अगर उसे वो अपनी इच्छा पूरी नहीं भी होती हुई नजर आती है, तो वो क्या समझता है कि कृष्ण ने मुझे वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो मेरे लिए हानिकारक होगा, मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, शुभ नहीं होगा। कृष्ण ज्यादा अच्छा, कृष्ण के प्लान्स मेरे प्लान से ज्यादा बेहतर है, तो वो संतुष्ट रहता है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरु तु वाचालं पंगुं लंघयति गिरं यत् कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। ये अत्यंत ही सुंदर चैप्टर है, श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 7 अत्यंत ही सुंदर है। इसमें पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपने, मतलब भगवान में किस तरह से मन लगाया जाए उसके विषय में बात की। भगवान ने कहा, मैया सक्त मना पार्थ योगम व्यंजन मदाश्रय असंशयम समग्रमाम यथा ज्ञास्यसि तच्छ्रु। अब मैं तुम्हें वो बताऊंगा कि तुम किस तरह से मेरी भावना से परिपूर्ण होकर मन को मुझ में आसक्त करके मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। मैं तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि ये वो बात है जैसे जान लेने के बाद और कुछ भी जानने के लिए रह नहीं जाया कि क्या क्या जानना है कि भगवान के अंदर अपना मन कैसे लगाया जाए और भगवान को किस तरह से प्राप्त किया जाए। फिर भगवान ने कहा, देखो अर्जुन, बहुत सारे लोग हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, उनमें से कोई एक ही सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, बाकी तो कुत्तों की तरह जीते हैं, बस खाओ पियो मरो, यही उनके जीवन का लक्ष्य होता है। एक कोई ऐसा होता है जो सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश करता है, और जो सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, यतथामपि सिद्धानां कश्चन माम वेत्ति तत्वतः, उनमें से कोई एक ऐसा होता है जो मुझे तत्व से जानता है। और उसके बाद भगवान ने अपनी विभिन्न शक्तियों के, पराशक्ति और अपरा शक्तियों के विषय में बताया। भगवान ने कहा, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति रष्टदा, कि आठ प्रकार की मेरी भिन्ना प्रकृतियां हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार। लेकिन भगवान ने फिर आगे कहा कि अपरियमित स्वयं प्रकृतिम विद्धि में परा, ये सब अपरा प्रकृति है, अब मैं आपको एक परा प्रकृति के विषय में बताता हूँ। और भगवान ने कहा, जीव भूता महाबाहु यहेदम धारयते जगत, कि वो जीव आत्मा है जो कि इस समस्त भौतिक प्रकृति को कि जितनी भी भौतिक मेरी वस्तुएं हैं उनको यूज करती है, उनका विदोहन करती है। और फिर भगवान ने बताया कि इस संसार में जो कुछ भी है वो इन दोनों प्रकृतियों से मिलकर बना है, और इस संसार में जो कुछ आध्यात्मिक है या भौतिक है, जो कुछ भी आपको दिख रहा है वो इन दोनों प्रकृतियों का मिलाप है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, श्लोक नंबर 7 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, धनंजय मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है, मैं सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव, चाहे भौतिक प्रकृति हो या आध्यात्मिक प्रकृति हो, मेरे ऊपर आश्रित है। जिस प्रकार मोती धागे के ऊपर आश्रित होते हैं, यदि धागा न हो तो मोती बिखर जाएंगे, उसी प्रकार यदि मैं नहीं हूं तो संसार बिखर जाएगा, जितनी भी प्रकृति है, जितने भी ब्रह्मांड है, वो सब बिखर जाए, भले मैं नहीं दिखता संसार में, मैं अदृश्य हूँ, लेकिन मेरी सत्ता पर सब कुछ टका हुआ है। उसके बाद भगवान ने अर्जुन को बताया कि किस किन 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 रूपों में आप मुझे याद कर सकते हो। भगवान ने एक छोटी छोटी चीजें, बहुत अच्छे छोटे छोटे उदाहरण दिए। भगवान ने कहा, रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषम नशु, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य और चंद्रमा की रोशनी हूँ, और वेदों में ओमकार हूँ, और आकाश में ध्वनि हूँ, यानी जो कुछ भी तुम्हें दिखता है, जिससे तुम्हें आनंद आता है, जिससे तुम्हें सुविधा मिलती है, वो ये सोचो कि मैं हूँ, मेरा अंश है। अगर आनंद मिलता है जल पीने से जिस समय, तो सोचो कि इसमें जो रस है वो मेरा है। सूर्य और चंद्रमा से जो प्रकाश निकलता है उसे देखकर तो मुझे याद करो। पुण्यो गंध पृथ्वीयां च तेजस चास्मी विभावसु, जो पुण्य गंध है पृथ्वी की, जो सुगंध है वो मैं हूँ, और आग में जो गर्मी है वो मैं हूँ, जीवों में जीवन में हूँ, तपस्वियों की तपस्या में हूँ। बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम, जान लो कि सारे जीवों का आदि बीज में हूँ, अगर मैं नहीं होता तो कुछ नहीं होता, सब कुछ मेरे कारण है, बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज में हूँ। आगे भगवान ने कहा, बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्षितम, बलवानों का बल में हूँ, और वो काम जो धर्म के विरुद्ध नहीं है वो मैं हूँ। आगे भगवान ने कहा, ये चाय वसात्विका भावा राजसा तामसास्य ये मत्त एवेति तान विद्धि न त्वं तेषु चे तेमयि, तुम जान लो कि संसार में जो भी सत्वगुण रजोगुण या तमोगुण हैं, ये सब मेरे द्वारा ही प्रकट होते हैं। एक प्रकार से तो मैं सब कुछ हूँ, परंतु मैं स्वतंत्र हूँ, मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे आदिन हैं। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने प्रकृति के गुणों के विषय में बताया कि देखो, ये जो प्रकृति है वो तीन गुणों से बनी हुई है, त्रिविर गुणमय भाव है, ए भी सर्वम इदम जगत, मोहितम ना भी जानाति मामे भी परम अव्ययम। लोग समझते हैं कि मैं भी प्रकृति के अधीन हूँ, लेकिन मैं तो प्रकृति से परम हूँ, इसलिए दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वये प्रपद्यन्ते माया में तम परंतिते। ये जो भौतिक प्रकृति है उसको कंट्रोल करना बहुत कठिन है। मम माया दुरत्यया, इसको कंट्रोल, इसके वश में करना बहुत कठिन है, लेकिन मामे वये प्रपद्यन्ते माया में तम तरंतिते। मुझे जो सरेंडर करता है, जो मेरी शरण में आता है, वो आसानी से इसको पार कर लेता है। फिर प्रकृति को पार करके वो आध्यात्मिक जगत में आ सकता है, लेकिन उस कैसे करेगा वो, मामे वये प्रपद्यन्ते, मेरी शरण में आएगा तभी वो प्रकृति को पार करेगा। फिर भगवान ने कहा, अर्जुन ने सोचा होगा फिर तो बहुत आसान है ना, सब लोग आपके पास आएंगे और फिर आपकी शरण में आकर प्रकृति को पार कर लेंगे। भगवान ने कहा, नहीं बेटा, सब नहीं आते ना। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्रहृत ज्ञान आसुरम भावमाश्रित। जो दुष्ट होते हैं, बेवकूफ होते हैं, जो नरों में अधम होते हैं, माया द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है, वो असुर बन जाते हैं और असुर भाव के कारण वे मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। फिर भगवान ने कहा, फिर भी चार प्रकार के ऐसे व्यक्ति हैं जो मेरी शरण में आते हैं, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। जो दुखी होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, धन चाहते हैं, या ज्ञानी होते हैं, वो मेरे पास आते हैं, मेरी शरण में आते हैं, मेरा भजन करते हैं। लेकिन इनमें से भी तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर विशेषते। जो ज्ञानी होता है और कोई इच्छा नहीं रखता, केवल मेरी भक्ति करता है, मुझसे प्रेम करता है, मैं भी उसे बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ, वैसे तो ये सभी अच्छे हैं। उदारा सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। सब ही अच्छे हैं, उदार है, लेकिन ज्ञानी जो है उसे तो मैं अपने आप के समान मानता हूँ। आस्तिता सही युक्त आत्मा मामे वानुत्तमाम गतिम। वो सदैव मेरी दिव्य सेवा में रहता है और मुझ परम उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। फिर भगवान ने कहा कि बहुत बहुत जन्म हो जाते हैं, फिर कोई ज्ञानवान ऐसा होता है जो माम प्रपद्यते, अपनी समस्त इच्छाओं को खत्म करके मेरी शरण में आता है और क्या सोचता है, वासुदेव सर्वम इति। कृष्ण को प्राप्त कर लिया तो कुछ और प्राप्त करने के लिए रह नहीं जाता, सब कुछ कृष्ण ही तो है, ऐसा भाव जिसका हो जाता है उसे भगवान ने कहा समहात्मा सुदुर्लभ। वो महात्मा होता है, लेकिन आज भगवान कह रहे हैं कामस्तस्ते हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवत। जिनकी बुद्धि कामनाओं द्वारा मारी जाती है वे देवताओं के पास जाते। कल भगवान ने क्या कहा था श्लोक नंबर 19 में कि जिनके पास ज्ञान हो जाता है, ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जिनके पास ज्ञान पर्याप्त मात्रा में होता है वो किधर नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे, माम प्रपद्यते, मेरी शरण में जाएंगे। लेकिन जिनकी बुद्धि कामनाओं द्वारा हर ली गई होगी, यानी बहुत ज्यादा बेवकूफ हो जाएंगे। अब बुद्धि हर ली तो बचा क्या, उस खोपड़ी के अंदर खाली कचरा बचा ना। बुद्धि तो हर ली गई, हर ली गई मतलब किडनैप हो गई, किसके द्वारा, इच्छाओं के द्वारा। अब वो हरी हुई बुद्धि के द्वारा, यानी कि बुद्धि है नहीं, खोपड़ी खाली पड़ी हुई है, कचरा भरा हुआ है, फिर वो कहाँ जाते हैं, प्रपद्यन्ते न्य देवता, अन्य देवता, देवताओं के पास जाते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज संसार में हर तरफ नास्तिक लोगों की संख्या बढ़ी हुई है। मनुष्य लोग केवल इंद्र तृप्ति को ही जीवन का लक्ष्य मानते हैं। धार्मिक लोगों की संख्या वैसे ही बहुत कम है, लोग भक्ति भी नहीं करते, धर्म और शास्त्र को जानते ही नहीं है, और उनमें से भी मतलब कुछ, बहुत ही कुछ लोग हैं वो आस्तिक हैं, यानी कि वो धर्म की बात मानते हैं, समझते हैं, वो धर्म के विषय में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ धार्मिक उनके अंदर प्रवृत्ति होती है। और जिनके अंदर धार्मिक प्रवृत्ति होती है उनमें से भी अधिकतर लोग क्या करते हैं, देवी देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं। हम देखते हैं कृष्ण की कथा होती है, श्रीमद् भागवतम या भगवत गीता की कथा होती है, उसमें बहुत ही गिने चुने लोग होते हैं, और बाकी देवी देवताओं का कोई भंडारा होता है, उसमें इतनी भीड़ होती है कि हम देख के हैरान हो जाते हैं कि इतने लोग हैं क्या, इतने सारे लोग हैं फिर भी हमारे पास गीता क्लास में इतने थोड़े लोग होते हैं, वो क्यों? इसलिए इसका क्या कारण है, इस विषय को समझना, बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से समझना है, ये बहुत आवश्यक बात है। वास्तव में स्वयं अपनी श्रद्धा को बढ़ाने के लिए और कृष्ण भक्ति की निष्ठा को बढ़ाने के लिए और अन्य लोगों को भगवान की बजाय देवताओं की पूजा करने में लगे रहते हैं, उनको समझाने के लिए ये देवताओं वाला टॉपिक समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब यहाँ पर श्री कृष्ण 7.20 में क्या कहते हैं, कामस्तस्ते हृतज्ञाना। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि किस प्रकार के लोग देवी देवताओं की शरण में आते हैं, जिनका हृदय कामनाओं से भरा हुआ होता है और उनकी बुद्धि इच्छाओं द्वारा मारी जाती है, वे कहाँ जाते हैं, अन्य देवता। अन्य देवता यहाँ पर भगवान ने फर्स्ट टाइम कहा है, उसके बाद भी भगवान कहेंगे 9.33 में, ये अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कान्तेय यजन्त विधि पूर्वकम्। भगवान कहते हैं जो दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं और बहुत ही श्रद्धा से उनकी पूजा करते हैं, वे भी मेरी पूजा करते हैं लेकिन यजन अविधि पूर्वक, वो गलत तरीके से करते हैं। मेरी पूजा ऐसे नहीं की जाती है, यानी भगवान अविधि पूर्वक का मतलब ये विधि नहीं है, मेरी पूजा देवताओं के माध्यम से नहीं बल्कि मेरी शरण में आकर करनी चाहिए, ये जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अब 7.20 में आज भगवान क्या कह रहे हैं, अन्य देवता। क्या कहते हैं भगवान, कामस्तस्ते हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। अब इसमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कृष्ण भी देवता हैं और दूसरे भी देवता हैं, तो किसी भी देवता कृष्ण को छोड़कर दूसरे देवता। वास्तव में देवता का एक मतलब होता है पूजनीय या महान। तो भगवान कहते अन्य जो महान व्यक्ति, महान जिनको पद मिला है, अब पद दिया वो किसने दिया है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इन देवताओं को महान पद प्राप्त है और भगवान का पद अलग है। लोग क्या मानते हैं कि ये भी देवता है वो भी देवता है, इनमें से कोई एक चॉइस कर देंगे और उनकी भक्ति करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान भगवान है और देवता देवता है। सारे शास्त्र इस बात को स्पष्ट करते हैं, गीता में स्वयं भगवान कहते हैं 10.2 में, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तत, मैं समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का पिता हूँ, मुझसे ही सब कुछ उद्भूत हुआ है, मैं सबका स्रोत हूँ। भगवान अर्जुन कहते हैं, हाँ कृष्ण 10.11 और 12 अर्जुन कहते हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम अव्ययम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। आप परम ब्रह्म हो, परम धाम हो, परम पुरुष हो, परम पवित्र हो और वास्तव में केवल आप ही शरण लेने योग्य हो। कृष्ण ने कहा, आप कह रहे हो से क्या फर्क पड़ता है, आप तो मेरे मित्र हो। तब अर्जुन ने कहा, नहीं नहीं, मैं अकेले थोड़ी कहता हूँ, आहुस्ताम ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं शैव प्रवीशि मे। असित देवल, सारे ऋषि मुनि, नारद, ब्रह्मा सब आपके बारे में इसी तथ्य के विषय में कह रहे, और स्वयं शैव, अभी आपने भी तो कहा कि आप ही सर्वस्य प्रभु हो। वेद व्यास जी और ब्रह्मा जी इस बात के विषय में कहते हैं कि भगवान ही परम, कृष्ण ही परम पुरुष भगवान है। ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परमा कृष्ण। वेद व्यास जी कहते हैं कि एते चन सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। परंतु अब ये समझना है कि देवता लोग कौन है और उनको बनाने का क्या कारण है। ये देवतागण वास्तव में श्री कृष्ण के प्रतिनिधि होते हैं, जैसे सरकार के ऑफिसर होते हैं, मंत्री होते हैं जो सरकार का काम संभालते हैं और सारे देश को चलाते हैं, उसी प्रकार ये देवी देवता जो है वो भी भगवान के ऑफिसर्स हैं, यानी भगवान के वर्कर्स हैं जो इन सारे ब्रह्मांडों में भगवान का कार्य संभालते हैं। अब यहाँ पर यह प्रश्न उठेगा ही कि क्या भगवान श्री कृष्ण स्वयं अकेले इन ब्रह्मांडों को नहीं संभाल सकते, देवताओं को बीच में लाने की क्या आवश्यकता है? अगर इतने सारे देवता नहीं होते तो लोग भ्रमित भी नहीं होते, एक ही कृष्ण होता, सब उसकी ओर जाते। अगर देवी देवता नहीं होते तो कितना इजी होता, समस्या ही हल हो जाती, एक ही कृष्ण, बस उसी की भक्ति। देवता भी बनाए तो भी एक दो नहीं, कितने 33 करोड़ देवी देवता। भ्रमित होने के लिए भगवान ने काफी स्कोप रखा है। अभी देखो क्या है कि अगर हम किसी मार्केट में जाते हैं, एक दो वैरायटी होती है तो उसमें से चूज करना बहुत आसान है, लेकिन अगर किसी बड़े सुपर स्टोर में जाते हैं, बहुत बड़ी अगर बिग बाजार में जाते हैं, तो क्या होता है, हजारों वैरायटी होती है, फिर समस्या और भी गंभीर हो जाती है। उसी प्रकार यहाँ पर इतने सारे देवी देवता हैं और इतना उनका बखान किया गया है वेदों में कि हर कोई भ्रमित हो रहा है, हर कोई परेशान हो रहा है, समझ ही नहीं पाता कि भगवान की भक्ति करें। वो समझते हैं किसी के पास भी चले जाएंगे, अपनी चॉइस का देवता उठाते हैं और उसकी भक्ति करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर इस बात का पहले सबसे पहली बात तो ये है, उत्तर ये है कि भगवान को देवताओं की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि देवताओं को भगवान की आवश्यकता है। भगवान तो अपने आध्यात्मिक लोक गौलोक वृंदावन धाम में नित्य लीला में व्यस्त रहते हैं, सदैव आनंदित रहते हैं। यहाँ दुखालयम जगत में आने की उनको कोई आवश्यकता भी नहीं है और भगवान एक कदम भी अपने गौलोक वृंदावन से बाहर नहीं निकलते। वृंदावनम परित्यज्यम पादम एकम न गच्छति। अगर उनको जाना भी होता है तो अपने विस्तारित रूपों के माध्यम से अन्य जगहों पे जाकर कार्य करते हैं। अन्यथा श्री कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन जो कि आनंद घन है, वे एक कदम भी वृंदावन से बाहर नहीं निकलते, वो सदैव आनंद में रहते हैं। तो फिर यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि फिर ब्रह्मांड इतने सारे भगवान बनाते हैं, उनका सारा काम कौन संभालता है? इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण चैप्टर नंबर 9 में अत्यंत सुंदर रीति से बताते। भगवान कहते हैं, यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्व गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मस्थानि त्युपदारय। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जान। यानी जो कुछ भी है वो भगवान में स्थित होता है। ये सारी भगवान की प्रकृति जो है वो भगवान के अंदर ही स्थित है। अब क्या है, सर्वभूतानि कौन्ते प्रकृतिम यान्ति मामेकाम कल्पक्षये पुनस्थानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश कर देते हैं और कल्प जब दोबारा से प्रारंभ होता है नया कल्प, तो उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न कर देता हूँ। लेकिन ये सारे ब्रह्मांड बनाना और पुनः उनको अपने अंदर प्रवेश करा देना, ये सब भगवान की केवल इच्छा मात्र से होता है। ऐसा नहीं है कि भगवान को उसके लिए बहुत ज्यादा कार्य करना पड़ेगा और है ना सब तोड़ने के लिए, जैसे अगर कोई बिल्डिंग आप बनाओ उसको बनाने में कितना काम करना पड़ेगा, इतने सारे मजदूर जुटाने पड़ेंगे, सीमेंट और बहुत सारा लोहा और बहुत सारी चीजें लकड़ियां इत्यादि लेनी पड़ेंगी। लेकिन भगवान कहते हैं, प्रकृतिम सामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृत्स्नम अवशम प्रकृते वशात्। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, ये प्रकृति मेरी अधीन है, मेरी इच्छा से, केवल मैं इच्छा करता हूँ स्वतः प्रकट होती है और मैं वापस से इच्छा करता हूँ तो विनाश हो जाता है। लेकिन ये मत समझना कि मैं इनके द्वारा बाध्य होता हूँ। भगवान कहते हैं, न च माम तानि कर्माणि निबध्यन्ति धनंजय। मत सोचना कि ये सारे कार्य मुझे बंधन में डाल देते हैं। जैसे अगर कोई संसार में एक फैक्ट्री खोलता है, दूसरी जगह पे दूसरी फैक्ट्री खोलता है और तीसरी जगह पे तीसरी, तो फिर इस तरह से क्या होगा, वो इतना ज्यादा बिजी हो जाएगा, उसमें इतना ज्यादा उलझ जाएगा, उसका काम देखना होगा, उसका काम देखना होगा, ये दिन का चैन रात का सुकून सब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, न समान तानी कर्माणी निबध्यन्ति धनंजय। ये सारे कार्य मुझे बंधन बांधते नहीं है। और मैं कैसा होता? उदासीना वदासीना असक्तम तेषु कर, मैं इन सारे कार्यों से उदासीन रहता हूँ। मेरी प्रकृति जो है वो कार्य खुद करती है। कैसे करती है वो भगवान बताते हैं 10 में 9.10। भगवान कहते हैं मया दक्षिण प्रकृति ही सूर्यते सचराचरम हेतु नाने अकौंते या जगत विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है, मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। मैं इच्छा करता हूँ तो हर एक जो मेरे कारिंदे हैं, जो मेरे सारे दास हैं, मेरे भृत्य हैं, वो कार्य करना शुरू कर देते हैं। और फिर मेरी इच्छा, मैं इच्छा करता हूँ, किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है कि सूर्य अब तुम सुबह हो गई है, जल्दी से उठो, आपको आपके उठने का टाइम हो गया है। फिर वापस बोले कि देखो संध्या हो गई, चलो सो जाओ बेटा, अब मैंने चंद्रमा के टाइम हो गया, चंद्रमा आप उठो। इंद्र को ये बोलने की जरूरत नहीं होती कि वर्षा ऋतु आ गई है, आप अभी वर्षा करना शुरू कर दो, या फिर अभी बाहर का मौसम आ गया, फूल उगाओ, या अभी ये मौसम आ गया, अभी ये करो ये करो, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। भगवान कहते हैं मया अध्यक्षेण, केवल मेरी इच्छा के अनुसार सारे जो कार्य है वो स्वतः होते हैं। हेतु नाने व कौनते जगत विपरिवर्तते, और मेरी अध्यक्षता में ही ये जगत बारंबार सृजित होता है और विनष्ट होता है। यानी ये सारे, क्योंकि भगवान उदासीन है, भगवान को इस प्रकृति के अंदर आसक्ति नहीं है, तो ये भगवान की इच्छा के अनुसार प्रकृति स्वयं ही विभिन्न कार्य विभिन्न देवताओं में संभाले हुए हैं। क्योंकि भगवान की इच्छा है ना, तो सारे कार्य जो है वो देवता संभालते हैं। ये पहला कारण है देवताओं के होने का। मतलब इसका मतलब क्या है कि भगवान को इस प्रकृति के अंदर कुछ भी आसक्ति नहीं है। ये भगवान मयाध्यक्षेण, भगवान की अध्यक्षता में कार्य करने के जो ये उनके अंदर उनके ही अंश हैं, उनके ही वर्कर्स हैं, और ये पूरी ब्रह्मांड के सिस्टम को चलाने के लिए स्वतः कार्य करते हैं। तो ये हुआ पहला कारण देवताओं के होने का। अब हम देवताओं के होने का दूसरा कारण जानेंगे। अब देखो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि सारे जीव जो भगवान के पास आते हैं, उन अब जो भगवान की भक्ति करते हैं, उनकी एक इच्छा होती है कि हम भगवान के लिए कुछ सेवा करें, है ना, कोई ना कोई सेवा। अब जैसे हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जैसे हम आते हैं, तो फिर हमारी एक इच्छा होती है कि हमें कोई सेवा मिले। अगर सेवा नहीं तो फिर भक्त को आनंद नहीं मिलेगा। भक्त जो है वो सदैव सेवा करना चाहता है। तो भगवान क्या करते हैं, जो जीव बहुत ज्यादा उत्साह के साथ भगवान की शरण में आते हैं, अब उनके अंदर ये इच्छा होती है कि हम किसी तरह से भगवान की सेवा करें, तो भगवान उनको विभिन्न सेवाएं प्रिस्क्राइब करते हैं, विभिन्न ड्यूटीज प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसे यहाँ पर भी मंदिर में सब भक्तों को अलग अलग सेवाएं दी जाती है ना, जैसे कि भाई आप भगवान के लिए फूलों की मालाएं बनाना, आप भगवान के लिए भोग बनाना, आप भगवान के लिए वस्त्र बनाना, आप भगवान का श्रृंगार करना, आप भगवान की आरती करना। तो भगवान की जो पर्सनल सेवाएं हैं वो जो विशेष भक्त होते हैं उनको दी जाती हैं। उसी तरह से अब देखो इस यहाँ पर भी क्या होता है, जो सन्यासी होते हैं उनको मैनेजमेंट वगैरह में भाग देने के लिए नहीं, मैनेजमेंट का कार्य नहीं दिया जाता है उनको। क्या दिया जाता है, वो ज्यादातर तो अपना भजन करते हैं और या फिर प्रीचिंग करते हैं। इसी प्रकार अब देखो कृष्ण जो है उनका मुख्य कार्य क्या है, केवल बांसुरी बजाना और आनंदित होना। भगवान को ये सारी मैनेजमेंट वगैरह से कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, भगवान इस सारे झगड़े में नहीं आते हैं। वो सब देवताओं को ये सारी ड्यूटीज दे देते कि भाई आप ये करो, सारे ये करो, और मैं अपने भक्तों के साथ प्रेम आनंद का खाली आनंद की लीला करूंगा। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सारे देवताओं को जिनकी इच्छा होती है, मतलब वो पहले देवता नहीं होते हैं, मनुष्य होते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं और उनकी इच्छा होती है कि हम भगवान के लिए कुछ कार्य करें, तो भगवान उनको अलग अलग सेवाएं दे देते हैं। अब ये हुआ देवताओं को बनाने का दूसरा कारण। अब हम देवताओं को बनाने का तीसरा कारण यहाँ पर जानेंगे कि देखो, जो भगवान के पास आते हैं जरूरी नहीं है कि वो शुद्ध भक्त हो। वो शुद्ध नहीं होते हैं, उनके अंदर कुछ इच्छा रहती है। शुद्ध भक्ति का क्या मतलब है? अन्य अभिलाषिता शून्यम, कोई भी इच्छा नहीं रहती। लेकिन अब जाहिर सी बात है, संसार में कुछ लोग भगवान के पास आते हैं, उनकी इच्छा होती है। अब कृष्ण बहुत कृपालु है, सारे भक्तों की सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो और चाहे भौतिक हो, सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। अब किसी किसी को क्या होता है, वो भगवान की भक्ति तो करते हैं लेकिन मान सम्मान की इच्छा होती है, तो भगवान उसे भी दे देते हैं कि भाई ठीक है, तुम मेरी भक्ति करो, प्रीचिंग करो और धीरे धीरे आपको मान सम्मान मिलेगा। परंतु यदि वो अपनी सेवा में सिंसियर है और सीरियस है तो धीरे धीरे क्या होगा, बाकी सारी इच्छाओं को त्याग देगा और भगवान की भक्ति को ही अपना जीवन का लक्ष्य मानेगा। उसी प्रकार कुछ भक्त जो होते हैं वो भोग की इच्छा लेकर भगवान के पास आते हैं। अब उन्हें भोग की इच्छा है तो भगवान उन्हें ऐसा पद दे देते हैं जहाँ पर परिपूर्ण मात्रा में भोग भी मिले और साथ साथ में सेवा भी। अगर किसी को भोग की इच्छा होती है तो वो भी कृष्ण की शरण में आते हैं, फिर कृष्ण इस संसार के भोग को उनको देते हैं, या फिर वो अगर और भी संसार के भोग को त्याग देता है। हाँ, वो क्या करता है, मुझे संसार का भोग नहीं चाहिए कृष्ण, मैं वो और भी ज्यादा भक्ति करता है और लेकिन उसके हृदय में भोग की इच्छा होती है। वो अगर बहुत ही तीव्रता से भक्ति करता है तो भगवान उसको देवता बना देता है। तब वो जैसे कोई सौ यज्ञ करता है तो उसको, अगर किसी को देवता बनना है तो उसको भौतिक भोगों का त्याग करना होगा, वैदिक अनुष्ठानों का पालन करना होगा और उसके अनुसार धार्मिक जीवन बिताना होगा, फिर वो देवता बन जाएगा। ये देवता पोस्ट है, बदलती रहती है। उसी प्रकार अब ब्रह्मा जी को समझो, सृष्टि का निर्माण करने की इच्छा हुई कि मैं जो है वो सृजन करता बनूं, तो भगवान ने कहा ठीक है, वैसे भी मुझे ब्रह्मांड बनाना ही है और आपकी इच्छा भी है और आप मेरी शरण में आए हो, तो ठीक है आप मेरे लिए कार्य करो। इंद्र को स्वर्ग के ऐश्वर्य की इच्छा, तो भगवान उन्हें दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये नहीं सोचना चाहिए कि जब देवताओं ने ऐसा किया तो वो देवता बन गए, तो हम भी अभी ऐसी इच्छा करना शुरू कर दें और हम भी कल देवता बन जाए। ये बहुत खतरनाक है, यानी एक यहाँ पर एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। क्या कि जब हमें भौतिक ऐश्वर्य मिलते हैं तो हम अपनी वास्तविक स्थिति को भूल जाते हैं कि हम भगवान के सेवक हैं। जैसे इंद्र भूल गए थे और भगवान से टक्कर ले ली थी, है ना, भगवान के ऊपर वर्षा करना शुरू कर दिए थे। कभी ब्रह्मा भूल गए थे, ब्रह्मा विमोहन लीला हुई थी। तो इसलिए हमें केवल शुद्ध भक्ति की अभिलाषा रखनी चाहिए और ये सब देवता वेवता बनने के चक्कर में हमें भगवान की भक्ति नहीं करनी चाहिए। केवल शुद्ध भक्ति की इच्छा रख के अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम अनुकूलेन कृष्णानु, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भक्ति करनी चाहिए। लेकिन फिर क्या होता है, अब समय के साथ साथ उन देवताओं का भी टाइम खत्म हो जाता है, फिर किसी और को रखा जाता है, जो दूसरा उससे ज्यादा भक्ति करता है उसको रखा जाता है। तो इसलिए ये खतरनाक सौदा नहीं करना चाहिए। अब ये हुआ तीसरा कारण। अभी हम देवताओं को बनाने का चौथा कारण पढ़ेंगे। जैसे देवताओं की भोग करने की प्रवृत्ति होती है, उसी प्रकार कुछ जीव जो देवता बनने के योग्य नहीं है। अब देखो चौथा कारण सुनो कि वो क्यों बने थे, क्योंकि उनकी इच्छा थी निर्माण करने की या फिर ना ऐश्वर्य भोगने की। लेकिन अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इतनी बड़ी स्टेज का भोग नहीं करना चाहते। वो क्या चाहते हैं, बस इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। देवता नहीं बन सकते, वो देवता बनने के योग्य नहीं है, पर भोग की इच्छाएं हैं। तो किसी को किसी वस्तु की इच्छा होती है, किसी को किसी वस्तु की इच्छा होती है, किसी को किसी वस्तु की इच्छा होती है। तो भगवान इन समस्त अभक्तों को, यानी वो भगवान की भक्ति करना नहीं चाहते, भगवान के पास शरण में लेना, तो भगवान है ना उनको बाई फोर्स अपनी भक्ति नहीं करवाना चाहते। भगवान बोलते ठीक है, अगर तुमको भौतिक इच्छाओं की आवश्यकता है तो ठीक है, तुम अगर मेरी शरण में नहीं आते हो, मुझसे प्रेम नहीं करते हो, मेरी भक्ति नहीं करना चाहते, तो जाओ, उसको मैंने ये डिपार्टमेंट सौंपा हुआ है, किसी को धन का डिपार्टमेंट सौंपा है, किसी को ज्ञान का डिपार्टमेंट सौंपा है, किसी को पुत्र का सौंपा है, किसी को पति को सौंपा है, जाओ उधर जाके अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करो। मेरे पास खाली भौतिक इच्छाओं के लिए नहीं आना है तो नहीं आओ, भले मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, यानी मतलब यह है अभक्तों, मतलब जो कृष्ण की शरण में नहीं आना चाहते हैं परंतु फिर भी शास्त्रीय विधि विधानों से भोग करना चाहते हैं, तो फिर क्या होता है, भगवान उनको सुविधा दे देते हैं कि चलो ठीक है इस तरह से, शास्त्रों में भी भगवान ने दे दिया कि इस तरह से आप। अब हर एक जीव अलग अलग प्रकार से भोग करना चाहता है, भगवान उनको उनकी इच्छा के अनुसार हर एक चीज जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इसलिए भगवान ने इतने सारे देवता बनाए हैं, तो जिन जिनको जिस जिस चीज की आवश्यकता होती है वो व्यक्ति जो है वो देवताओं के पास जाते हैं। लेकिन अब मैं आपको देवताओं और भगवान की पूजा में डिफरेंस बताऊंगी। यहाँ पर मैं ये बात हमें समझनी है कि देवताओं की उपासना जो है वो 100% भौतिक है, क्योंकि देवता भी भौतिक हैं, उनका शरीर भी भौतिक है और उनसे जो हमें रिजल्ट मिलता है वो भी भौतिक है। लेकिन हम क्या हैं, हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं और हम भगवान की चिन्मयी अंश हैं। उसी तरह कृष्ण आध्यात्मिक हैं, कृष्ण का शरीर आध्यात्मिक है, कृष्ण जो हमें भौतिक भी यदि सुविधा प्रदान करते हैं तो वो भी आध्यात्मिक है। सारे धर्म आध्यात्मिक नहीं होते हैं, अगर देवताओं की जाके आप पूजा करते हो तो वो आध्यात्मिक नहीं होता, भक्ति नहीं की जा सकती देवताओं की, देवताओं की उपासना की जा सकती है, भक्ति केवल कृष्ण की जाती है। तो यहाँ पर एक प्रश्न और इरेज होता है कि अगर कोई भौतिक इच्छाएं लेकर कृष्ण के पास जाए तो ये तो भौतिक इच्छाएं है ना, तो कृष्ण कहते हैं तुम आ जाओ बेटा, कोई बात नहीं, तुम सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। इसीलिए आज हमने श्रील प्रभुपाद जी ने जो बताया श्लोक में, अकाम सर्व काम हो वा मोक्ष काम उदार भी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम, चाहे आपके अंदर कोई कामना नहीं है या करोड़ों करोड़ों कामनाएं हैं या मुक्ति चाहते हो तो भी आपको क्या करना है, यजेत पुरुष परम, तो भी कृष्ण की शरण में आना है। तो ये विभिन्न स्टेजेस हैं। सबसे पहला स्टेज क्या है, देवताओं की पूजा करके भौतिक लाभ करना। नंबर दो, भगवान की भक्ति करके भौतिक लाभ प्राप्त करना। और नंबर तीन है भगवान की शुद्ध भक्ति। तो इनमें से सबसे ज्यादा श्रेष्ठ क्या है, ये श्रीमद भागवतम में 1.2.11 में बताया, सवै पुंसाम परो धर्मो यतोर भक्ति अदोक्षजा अहितुकिया प्रतिहिताहा ययात्मा सुप्रसीदति। आत्मा को यदि प्रसन्न करना है, यदि आत्मा को संतुष्ट करना है तो सबसे महान भक्ति क्या है, सवै पुंसाम परो धर्मो, परम धर्म क्या है, यतुर भक्ति अदोक्षजे, भगवान श्री कृष्ण के प्रति अहितु की भक्ति, कोई भी उसके अंदर इच्छा नहीं होनी चाहिए, अप्रतिहिता कंटिन्यूस भक्ति होनी चाहिए, यही वास्तविक धर्म है। अब इसके अतिरिक्त जो जो कुछ भी है, भगवान की शुद्ध भक्ति के अतिरिक्त जो कुछ भी है, भागवतम कहता है कि वो सब केवल धोखेबाजी है। भागवतम में शुद्ध भक्ति के विषय में बताया गया है, और कहाँ बताया गया, भागवतम में 18,000 श्लोक हैं, उसके बीच में कहीं 14,500 श्लोक में या 14,300 श्लोक में, इस तरह नहीं बताया गया, दूसरे श्लोक में श्रीमद् भागवतम 1.1.2 में बताया गया, धर्मः प्रोजित कहे तवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतम, कि ये जो धर्म है, जो भागवत धर्म है, वो जितने भी अन्य धर्म है उन सबसे अलग है। अन्य धर्म जिनमें भगवान श्री हरि की शुद्ध भक्ति नहीं है, भागवत पुराण में उनके लिए कोई जगह ही नहीं है, प्रोजित कैतव, वो जो कैतव धर्म है, जो धोखेबाजी है, उनको निकाल के फेंक दिया गया है। ये सिर्फ निर्मत्सर जीवों के लिए है जो कृष्ण भक्त हैं। अब कृष्ण भक्त के अंदर ये इच्छा नहीं होती है, कामनाएं नहीं होती है, वो सदैव भगवान की भक्ति करके ही संतुष्ट होना चाहते हैं, क्योंकि या आत्मा सुप्रसिद्धति, आत्मा को प्रसन्न करने की एक ही विधि है कि भगवान की अहितु की भक्ति की जाए। और इसी चीज को श्रीमद् भागवतम बताती है अत्यंत ही सुंदर रीति से। श्रीमद् भागवतम में आता है, सर्वोपाधिर् विनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते। वास्तविक भक्ति क्या है कि हम श्री कृष्ण की सेवा करें। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि ऐसी सेवा से क्या लाभ मिलेगा। तो शास्त्र कहता है सर्वापाधि विनिर्मुक्तम, यानी जितनी भी सारी भौतिक उपाधियां हैं, भौतिक इच्छाएं, उनसे मुक्ति मिलेगी। तत्परत्वेन निर्मलम, और सारी इंद्रियां और हृदय निर्मल हो जाएगा पूरी तरह से। क्या करने से? ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम। ऋषिकेन ऋषिकेश, यानी ऋषिकेन कहते हैं इंद्रियों को और ऋषिकेश कहते हैं इंद्रियों के स्वामी के। यदि हम अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की सेवा में लगाएंगे तो यही वास्तविक भक्ति है। सेवनम भक्ति उच्यते, इससे बड़ी कोई भक्ति हो ही नहीं सकती। और क्यों? इससे क्या होगा? हृदय का शुद्धिकरण होगा। हृदय के अंदर जो भी मलिनता है, जो अशुद्धता है, जो इच्छाएं हैं, जो काम वासना है, वो सब पवित्र हो जाएंगी। भले आप किसी भी इच्छा से भगवान की सेवा में आते हो तो क्योंकि भगवान आध्यात्मिक है तो हमारी भौतिक इच्छाओं का सर्वनाश हो जाएगा। ये कैसे होता है? ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वसंगतो पिवा यह स्मृति पुंडरीकाक्ष सभाय भयंतर शुचि। यानी डिफरेंस क्या है यहाँ पर कि अगर हम देवताओं के पास ना जाकर भगवान के पास जाएंगे तो क्या होगा? भले ही अपवित्र हैं, चाहे हम पवित्र हों या अपवित्र हों, चाहे हम किसी भी अवस्था से गुजरे हों, अगर हम भगवान श्री हरि का स्मरण करते हैं तो हम शुद्ध बन जाते हैं। भगवान की सेवा से शुद्धि प्राप्त हो जाती है। इसे भगवान ने यहाँ पर बताया कि 7.20 में भगवान ने क्या बताया? कामनाओं के कारण, काम वासना के कारण देवताओं की भक्ति करते हैं तो क्या होता है? देवताओं की भक्ति करने से वासना समाप्त नहीं होती है, वासना और भी बढ़ती है। क्योंकि बुद्धि तो वैसे भी नहीं है, तो बुद्धि तो वैसे ही क्या हुआ, काम वासनाओं ने खींच ली, तो फिर और भी हमारी वासना बढ़ने लगती है। लेकिन यदि हम भगवान की उपासना करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो क्या? अपवित्र पवित्र हुआ, हम स्वतः हमारी अपवित्र भावनाएं धीरे 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 समाप्त हो जाती हैं। अब ये वास्तविकता है कि यह संसार क्योंकि भौतिक कलमशों से परिपूर्ण है तो जीव जो है, जो कि क्योंकि इस प्रकृति में जकड़ा हुआ है तो अपवित्रता से बच नहीं सकता। इसलिए हमें सदैव भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए, क्या? इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पाए पाए मुरारे। ये संसार जो है वो बहुत कठिन है। यह संसारे बहुत उस्तारे, बहुत कठिन जगह है और इसको पार करने का एक ही उपाय है, कृपया पारे पाहे मुरारे। यदि हम भगवान मुरारी श्री कृष्ण की शरण में जाएंगे, उनको याद करेंगे तो ही हम इस संसार के कलमशों से, अशुद्धता से, अपवित्रता से मुक्त हो सकते हैं। और भगवान की शरण में जाने का आसान तरीका है भगवान के पवित्र नाम का जप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं। हरे कृष्ण।